13वां पतझड़ की आवाजें, निरुपमा सेवती, 1976, पृष्ठ संख्या 163। हिंदी की आधुनिक लेखिकाओं में निरुपमा सेवती अग्रिम पंक्ति में आती हैं। उनके लेखन में नारी विमर्श के नुकीले कोण उपलब्ध होते हैं। पतझड़ की आवाजें उनका एक प्रमुख उपन्यास है, जिसकी नायिका अनुभा आधुनिक नारी के स्वत्व और स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत से लोग आधुनिक लेटेस्ट फैशन और स्वच्छंद मुक्त यौनाचार को ही आधुनिकता के लक्षण मानते हैं, परंतु अनुभा जागरूकता को आधुनिकता का एक मुख्य लक्षण मानती है। आधुनिक होने के लिए दिमाग का खुलापन होना परम आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। अनुभा का बचपन भयंकर अभाव से गुजरा है। 1947 के कौमी दंगों की हृदय विदारक घटनाओं के विषय में उसने सुना था। उन दंगों में पाकिस्तान से भागते हुए आतताइयों ने उसके परिवार के साथ अमानुषी व्यवहार किया था। रेल के डिब्बे में घुसकर छोटी बहू को घसीटकर बाहर ले गए थे और फिर उस पर बहिसीपन और बर्बरता के साथ प्लेटफॉर्म पर ही अनेक लोगों ने बलात्कार किया था। प्रतिरोध करने पर अनुभा के भाई को चाकू भोंक दिया गया था। अनुभा ने यह सब देखा नहीं था, पर लोगों के मुंह से सुना था। अतः मणि मधुकर के उपन्यास सफ़ेद मेमने के बन्नों की तरह अनुभा के मन में भी सेक्स के प्रति उदासीनता की वृत्ति दृष्टिगोचर होती है। यह उदासीनता टूट सकती थी, परंतु रमनेश के द्वारा उसे जो मानसिक आघात पहुंचा है, पृष्ठ संख्या 164, उसके कारण उसके मन की खाई भरने के बदले और बढ़ जाती है। अनुभा का परिवार निम्न मध्य वर्गीय कोटि में आता है और निम्न मध्य वर्ग को हमारे यहाँ अनेक आर्थिक सामाजिक विभिषिकाओं से गुजरना पड़ता है। आर्थिक विपन्नता के कारण अनुभा के परिवार को एक ऐसे मोहल्ले में रहना पड़ता था जो बदनाम था। वहाँ पर वेश्याओं के कोठे थे। इन कोठों के कारण अनुभा तथा उसके परिवार को कई बार बड़ी विचित्र घटनाओं से गुजरना पड़ता था। अच्छे विस्तारों में अधिक किराया देना पड़ता है और अनुभा का परिवार आर्थिक दृष्टि से उस स्थिति में नहीं था, अतः वे लोग वहाँ रहने के लिए विवश होते हैं। अनुभा की सगाई भी इसी कारण से टूटती है, अतः अनुभा को चाहते हुए भी रमनेश उसे छोड़ देता है। रमनेश एक शिक्षित युवक होते हुए भी जिस दकियानुसी का प्रदर्शन करता है, उससे अनुभा को वितृष्णा होने लगती है। वस्तुतः रमनेश को चाहिए था कि वह अनुभा के पक्ष में चट्टान की मानिंद खड़ा रहता। घर परिवार वाले मित्रगण यदि विरोध करते या उस पर हंसते, तब भी उसे अनुभा के साथ रहना चाहिए था, परंतु यहाँ वह भी मिट्टी का माधव सिद्ध होता है और अनुभा को छोड़ अपनी नामर्दगी का परिचय देता है। पैराग्राफ चेंज। परंतु अनुभा आधुनिक समय की एक सुशिक्षित और संघर्षशील महिला है। अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तथा भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए वह खूब संघर्ष करती है। घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि उसे कॉलेज में पढ़ाया जा सके, परंतु सबके विरोध के बावजूद वह बीए में दाखिला ले लेती है। बीए की पढ़ाई के साथ साथ वह टाइपिंग का कोर्स भी करती है, परंतु घर की स्थिति निरंतर बिगड़ती ही जाती है और फलतः कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर उसे नौकरी करने पर आमदा होना पड़ता है। परंतु अनुभा दूसरी ही मिट्टी की बनी हुई है। परिस्थितियों के सामने झुकना उसने नहीं जाना है। वह नौकरी के साथ साथ प्राइवेट तौर पर अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। उसके ऑफिस के दोस्त धीरेन वर्मा रीझू स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे। उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से अनुभा को मानसिक राहत मिलती है, परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं टिकती, क्योंकि वर्मा जी की पत्नी भौतिकवादी प्रकृति की थी। उसे थोड़े में संतोष नहीं होता था। नौकरी तो नौकरी है, उसकी आमदनी बंधी हुई होती है, अतः उसमें बरकत नहीं होती। व्यवसाय में आदमी की आमदनी की कोई सीमा नहीं रहती, वह व्यक्ति की काबिलियत पर आधारित रहती है। फलतः बहुत से महत्वाकांक्षी लोग नौकरियों को परित्याग करके व्यवसाय में कूद पड़ते हैं। यहाँ वर्मा जी संतोषी प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु पत्नी के हठग्रह के कारण नौकरी से त्याग पत्र देकर व्यवसाय में चले जाते हैं। अतः अनुभा को सीके के साथ काम करना पड़ता है। वर्मा जी और सीके की प्रवृत्ति में आसमान जमीन का फर्क था। जहाँ वर्मा जी एक सज्जन और गृहस्थ किस्म के आदमी थे, वहाँ सीके एक भ्रष्ट चरित्रहीन और चलता पुर्जा वाला व्यक्ति था। जब अनुभा ने उसके सामने अपनी निवास की समस्या को रखा तो सीके ने उसकी मजबूरियों से लाभ उठाना चाहा। वह अनुभा को ऑफिस में प्राइवेट सेक्रेटरी का पद ऑफर करता है, परंतु नौकरी के अनुबंध में जो शर्तें रखता है, अनुभा की आत्मा को वह स्वीकार्य नहीं होता। वह अपनी योग्यता, प्रतिभा और बुद्धि के सहारे आगे बढ़ने में विश्वास करती है। पृष्ठ संख्या 165। परंतु पुरुषों के सम्मुख स्त्री की एक ही योग्यता होती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसकी सुंदरता, उसका शरीर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमारे यहाँ के भ्रष्ट माहौल में स्त्रियों के लिए केवल प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना मुश्किल सा होता जा रहा है। जो स्त्री अपने शरीर के चेक को भुनाती है वह आगे निकल जाती है, और जो यह नहीं कर सकती उसकी नीति में पिछड़ना ही रहता है। अनुभा को भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनुभा के कार्यालय में ही उषा नामक एक दूसरी युवती है, जो सुंदर, महत्वाकांक्षी तथा स्वार्थी महिला है। अगर किसी पुरुष के द्वारा स्वार्थ सिद्धि होती हो तो चिड़ियाघर के गिरिराज किशोर की मिसेज रिजवी की भांति वह किसी भी सीमा तक जा सकती है। मिसेज रिजवी का तो सूत्र था कि आराम से नौकरी करनी हो तो अफसरों को कब्जे में रखना चाहिए, और अफसर को कब्जे में रखा जा सकता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्वयं बेवकूफ बनकर या अफसर को बेवकूफ बनाकर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ चिड़ियाघर गिरिराज किशोर, पृष्ठ संख्या 52। प्रस्तुत उपन्यास की उषा का भी स्पष्ट अभिमत है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इस मर्द जाति के साथ तभी सो अगर माल हासिल होता हो या पोजिशन हासिल होती हो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पतझड़ की आवाजें, निरुपमा सेवती, पृष्ठ संख्या 95। फलतः अकार्य कुशल तथा कामचोर होते हुए भी जो स्थान अनुभा को मिलना चाहिए था, वह स्थान अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी का स्थान उषा को मिल जाता है। अपनी कम तनख्वाह में भी वह प्रभुसत्ता संपन्न बड़े बड़े लोगों को दावतें देती है, आयातित महंगी शराबें पिलाती है, और यह सब करके समाज में एक पोजिशन हासिल करती है। पैराग्राफ चेंज। दूसरी तरफ अनुभा को अपने नारी सम्मान की रक्षा के लिए दो एक नौकरियां भी छोड़नी पड़ती है। अपने घर के लांछित घिनौने गंदे परिवेश के कारण वह उसे भी छोड़ देती है और हॉस्टल में रहने लगती है। वह अपने आसपास के माहौल तथा नारी के गिरते जीवन मूल्य से बहुत परेशान व दुखी रहती है। नौकरी के दौरान उसे तरह तरह के अनुभव होते हैं। कुछ समय एक प्लास्टिक वर्क्स कंपनी में काम करती है तो उसने देखा कि उस कंपनी का मालिक उसकी स्टेनो को जब तब अपनी केबिन में बुलाकर उसे अपनी जांघों पर बिठा लेता था। उसी प्रकार शहर के प्रख्यात सॉलिसिटर का साहबजादा साहब की टाइपिस्ट को छुट्टी वाले दिन भी बुला लेता था और देर रात तक उसे अपने ऑफिस में रखता था। इन अनुभवों के कारण अनुभा के मन में निरंतर आत्ममंथन चलता रहता है कि क्या महिला के लिए नौकरी का अर्थ आत्मसम्मान को तिलांजलि देना होता है। वह सोचती है कि व्यक्ति ने जीवन में उपभोक्ता प्रवृत्ति को इतना प्राधान्य क्यों दे रखा है। इस प्रवृत्ति के कारण अधिकारी कर्मचारी के संबंधों में भी अर्थशास्त्र के डिमांड एंड सप्लाई के नियम काम करने लगते हैं, तो मनुष्य की सचमुच प्रतिभा और योग्यता का क्या मूल्य रह जाता। क्या इस प्रकार के वातावरण में नारी अपना सम्मान, अपनी अस्मिता, अपनी व्यक्तिगत पहचान बना सकती है। यह और अनेकों ऐसे प्रश्न अनुभा की आत्मा को कुरेदते ही रहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास की दूसरी प्रमुख नारी है सुनीला। सुनीला के पिता का निधन हो गया है और माँ ने संन्यास ले लिया है। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती है और अनुभा के ऑफिस में ही रिसेप्शनिस्ट का कार्य करती है। नौकरी उसके लिए कोई आर्थिक मजबूरी नहीं है, परंतु घर का कटु वातावरण, निष्क्रियता तथा प्रेम जीवन में मिली हुई असफलता से अपनी वितृष्णा को मिटाने के लिए नौकरी करती है। पृष्ठ संख्या 166। विजय नामक एक युवक से उसे प्रेम हुआ था और उस प्रेम के कारण उसे गर्व भी रहता है, परंतु विजय बच्चे के उत्तरदायित्व को उठाना नहीं चाहता। अतः सुनीला गर्भपात करवा कर उससे मुक्ति पा लेती है, परंतु विजय से उसे नफरत हो जाती है। उसके कोमल हृदय को ठेस पहुंचती है और प्रेम जैसी भावनाओं से उसका विश्वास उठ जाता है। नौकरी के कारण उसकी मानसिक अवस्था में थोड़ा संतुलन आने लगता है, परंतु उच्चवर्गीय समाज की खोखली मान प्रतिष्ठा के विचारों के कारण सुनीला अधिक समय तक नौकरी नहीं कर सकती। उसके भाई भाभी को, विशेषतः उसकी भाभी को, उसकी नौकरी करना खलता है। हमारे यहाँ समाज और जाति में ही वर्ग भेद नहीं, नौकरियों में भी वर्ग भेद है। सुनीला यदि कोई उच्च अधिकारी के पद पर, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इत्यादि पद पर कार्य करती तो शायद भाई भाभी की प्रतिष्ठा में बट्टा न लगता, परंतु वह जो नौकरी करती है सामाजिक स्टेटस की दृष्टि से मामूली है। अतः भाई भाभी के दबाव के कारण उसे नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। उसके बाद उसके भाई भाभी सुनीला का विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद यदि कोई ढंग का, समझदार, गंभीर, सुशील और संस्कारी व्यक्ति पति के रूप में मिलता तो शायद सुनीला के जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर चल निकलती। परंतु उसका पति बहुत ही सामान्य अभिरुचियों वाला, दकियानूस और पुराने विचारों वाला व्यक्ति है। अधिकार भावना उसमें कूट कूट कर भरी है और स्त्री को वह पुरुष की संपत्ति के अलावा कुछ नहीं समझता। स्त्री मात्र उसके लिए एक माल होती है। दूसरी तरफ सुनीला शिष्ट, संस्कारी, अभिरुचि संपन्न, कला संपन्न आधुनिक युवती है। अतः वैचारिक असमानताओं के कारण उस व्यक्ति से ज़्यादा समय तक नहीं झेल सकती। अतः उसके वैवाहिक जीवन का अंत विवाह विच्छेद में होता है और इसी विवाह विच्छेद की त्रासदी स्थितियों के कारण सुनीला नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर लेती है। पैराग्राफ चीन। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल सुनीला की स्टूडेंट को आरोपित बनावटी और गढ़ी हुई मानती हैं, तो डॉक्टर मधुरेश को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद लेखिका इस पात्र का सम्यक निर्वाह नहीं कर पाई है। उनके शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ऐसा लगता है कि लेखिका जैसे एकदम शुरू से ही इसे तय नहीं कर सकी है कि यह कहानी सिर्फ अनुभव की कहानी होनी है या कि सुनीला और वैसी ही दूसरी युवतियों की भी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आलोचना, अंक 41, 1977, लेख पीड़ा की मोर्चा बंदी। तो डॉक्टर पुष्पा बंसल ने अनुभव के संदर्भ में एक नया प्रश्न उपस्थित किया है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एक सामान्य 400 रुपए पाने वाली बीए से कम पढ़ी टाइपिस्ट लड़की का यह संसार नहीं हो सकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ 252 उपन्यासों की समीक्षा, संपादक डॉक्टर सुषमा गुप्ता, पृष्ठ संख्या 272। अतः इसमें चित्रित पात्र आज की सामान्य नारी के प्रतिनिधि पात्र नहीं बन पाए हैं। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास को लेकर उठाए गए उक्त प्रश्नों और समस्याओं के संदर्भ में यदि पारुकांत देसाई ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, परंतु ऐसा नहीं है, मुख्यतः यह कहानी अनुभा की है। सुनीला का पात्र तो उसकी विशिष्टता ब्रैकेट में कंट्रास्ट में लाया गया पात्र है। सुनीला बाहर से आधुनिक बिंदास लगती है, बात बात में ठहाके लगाती है, परंतु भीतर से वह उतनी ही संवेदनशील है। ऊपरी तौर पर उसका रवैया लापरवाही का है, परंतु अंदर ही अंदर वह घुटती रहती है। अतः सुनीला की परिणति उसके गठन के अनुरूप है। उपन्यास का प्रकाशन पृष्ठ संख्या 167 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष अर्थात 1976 में हुआ है और उस समय 400 रुपये भी काफ़ी हुआ करते थे। उस समय कॉलेज के व्याख्याता तक का वेतन 500-600 हुआ करता था। दूसरे संघर्ष की क्षमता, सुविधा भोगी उच्च वेतनधारियों की तुलना में निम्न मध्य वर्ग के लोगों में अधिक होती है। मंजुल भगत की अनारों तथा गोदान की धनिया को लोग भूले नहीं होंगे, तभी तो अनुभा की तुलना में सुनीला कमजोर सिद्ध होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ आधुनिक लेखिकाओं के नगरीय परिवेश के उपन्यास, प्रोफेसर पारुकांत देसाई, पृष्ठ संख्या 112। इस तथ्य की प्रतीति संप्रति 2-3 वर्षों पूर्व प्रकाशित उपन्यास मुझे जान चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ तथा इदम नममा की मंदाकिनी से भी हो जाता है। यहाँ तक कि वर्षा वशिष्ठ में भी प्रारंभिक तबके में, जब तक वह निम्न मध्य वर्ग से संबद्ध रही, संघर्ष की क्षमता अधिक थी। बाद में सुविधा भोगी होने के तथा उपभोक्ता संस्कृति का अंग होने के उपरांत उसमें घुटन, संतरास इत्यादि उच्च वर्गीय मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ मिलने लगीं।